તારીખ 10/3/1999 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 567 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 851
શ્રીમદ રાજચંદ્ર 567 નું પત્ર છે, 450. જે આત્માનો અંતર વ્યાપાર એટલે અંતર પરિણામની ધારા, તે બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ છે. એટલે કર્મથી આત્માનું બંધાવવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું. માત્ર શરીર ચેષ્ટા બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી. શું કહે છે કે જીવને કર્મબંધ થાય છે એ પરિણામથી થાય છે. અંદરમાં જે આત્માને પરિણામ થાય છે એને લઈને કર્મબંધ થાય. સરાગ પરિણામ હોય તો, વિતરાગ પરિણામ હોય તો મોક્ષ થાય. શરીરની ચેષ્ટા અથવા શરીરની ક્રિયા બંધનું પણ કારણ નથી અને મોક્ષનું પણ કારણ નથી. અથવા શરીર છે તે આત્મા જ નથી, શરીર છે આત્મા નથી તો બંધ મોક્ષનું કારણ કેવી રીતે થાય? આત્મા પોતે જ પોતાના પરિણામનાથી બંધાય અને પોતાના પરિણામથી મુક્ત થાય. પરિણામો છે એ બંધ મોક્ષમાં, કર્મના બંધ મોક્ષમાં નિમિત્ત પડે છે. શરીર નિમિત્ત નથી પડતો. કોઈ પણોઠી વાળીને ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેસે એટલે મોક્ષ થાય એવું કાંઈ નથી, સમાધિ થઈ જાય એવું કાંઈ નથી. તેમ શરીરના કારણે કોઈ બંધ થાય એવું પણ નથી. તો જે કારણથી બંધ થાય, જેનાથી બંધ થાય એનાથી જ મુક્તિ થાય. આત્મા કે અંતરવ્યાપાર, આત્મા કા અંતરવ્યાપાર, એ બંધ ઓર મોક્ષ કી વ્યવસ્થા કા કારણ હૈ, હેતુ હૈ. માત્ર શરીર ચેષ્ટા બંધ મોક્ષ કી વ્યવસ્થા કા હેતુ નહીં હૈ. માત્ર શરીર ચેષ્ટા, નિમિત્ત નૈમિત્તિક રૂપ સે શરીર ચેષ્ટા હોતી હૈ વો અલગ બાત હૈ, લેકિન માત્ર શરીર ચેષ્ટા નહીં. જૈસે કોઈ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠતા હૈ, પરિણામ મેં સ્વરૂપ ધ્યાન લગતા હૈ, તો મુખ મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થ કે ધ્યાન કે પ્રભાવ હોતે હૈ. વહાં હસી કે યા દુઃખ કે કોઈ દૂસરે પ્રકાર કે ક્રોધ કે વિભાવ કે ભાવ નહીં હોતે મુખ મુદ્રામાં ભી. કેવલ શરીર કે પરિણામ બંધ મોક્ષ કે હેતુ નહીં. જીવ કે પરિણામ બંધ મોક્ષ કે હેતુ હૈ, સાથ સાથ શરીર કે પરિણામ મિલતે જુલતે હોતે હૈ, વો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સે હૈ. લેકિન કેવલ શરીર પરિણામ બંધ મોક્ષ કે હેતુ નહીં હૈ. વિશેષ રોગાદી યોગ સે જ્ઞાની પુરુષ કે દેહ મેં ભી નિર્બલતા, મંદતા, મ્લાનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂર્છા, બાહ્ય વિભ્રમ આદિ દિખને મેં આતા હૈ. ક્યા કહેતે હૈ કે કોઈ બલવાન રોગ આને સે, યાને રોગ બઢ જાને સે, જ્ઞાની પુરુષ કે દેહ મેં ભી નિર્બલતા દિખને મેં આતી હૈ, કમજોર શરીર હો જાતા હૈ. જ્ઞાની કા શરીર ભી કમજોર હો જાતા હૈ, मंद हो जाता है, कोई भी कार्य करने में मंदता आ जाती है कमजोरी के कारण से। म्लानता माने निस्तेजता आ जाती है, शरीर कुछ काला पड़ जाए, ब्राउन हो जाए, ऐसा कुछ शरीर में ऐसा हो जाए, विकृति आ जाए। कंप मैंने, वायु का कंप होता है, किसी का हाथ चलता है, किसी का पैर चलता है, किसी की डोब चलती है, ऐसा ऐसा हो जाता है। ये कंप भी हो सकता है ज्ञानी को भी। स्वेद मैंने पसीना, पसीना बहुत हो जाए, ये तो हार्ट पेशेंट को हो ही जाता है, तो ज्ञानी को भी हो सकता है। मूर्छा वो ले लिया है, जो मूर्छा है वो बाहर में मूर्छा दिखती है, भीतर में जागृति रहती है। उपयोग की कोई स्थिति ऐसी होती है कि बाह्य जागृति नहीं दिखे, लेकिन अंतर जागृति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की पकड़ आ जाती है। मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर बाहर का कोई भान नहीं रहे, सुत्सान नहीं रहे, बेशुद्धि आ जाए, ठीक हो सकता है, अंतर में बेशुद्धि नहीं होती है, स्वरूप जागृति बराबर होती है, लेकिन बाहर में मूर्छा भी दिखे। बाहर में लगे कोमा, अंदर में न हो, बाहर में कोई नहीं लगे, जवाब न दिए, अंदर बराबर पकड़ो है, वेदन ज्ञान वेदन ऊपर पकड़ो है, अने ए पकड़ ने कारणे पण बारमा उपयोग नो पण चालतो है, अने एमां रोग नो निमित्त होय। बाह्य विभ्रम आदि दृष्ट थाय छे, विभ्रम तो अज्ञान की अवस्था है, यहाँ बाह्य विभ्रम लिखा है। बाह्य विभ्रम मैंने कैसे, जैसे खाना खाने को जाए तो इधर हाथ हो जाए, मुंह पर हाथ नहीं जाए, मुंह में हाथ नहीं जाए, इधर इधर कुछ चले जाए, इससे तो लगे ऐसा कैसे होता है, खाना तो इधर ही होता है। अंधेरे में भी आदमी खाना खा सकता है, जरूरी नहीं है हाथ को देखे तो ही मुंह में जाए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन रोग के कारण से ऐसा लगे कि कुछ भ्रम हो गया है, ऐसा लगे
पहचानने में किसी को नहीं
आए, ये भी हो सकता है, स्मृति कम हो जाए, ये भी हो सकता है। तथापि उसमें भी जितना ज्ञान से, ज्ञान द्वारा या बोध द्वारा या वैराग्य के कारण से आत्मा को निर्मलता हुई है, उस उतनी निर्मलता के कारण से यह रोग को अंतर परिणाम से ज्ञानी अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, भोगते हैं। यानी जितनी निर्मलता है उतना भोगना मंद होता है, इतनी असर कम आती है। निर्मलता साधना के बल से होती, ज्ञान से, बोध से, वैराग्य से जितना बलवानपना होता है, निर्मलता होती है, पुरुषार्थ होता है, उतना रोग को भोगने का फर्क पड़ता है। एक ही गुण स्थान में फर्क पड़ता है, ऊपर में गुण स्थान में तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन जितनी साधना विशेष होती है उतना रोग का भोग कम होता है। वेदन करना, इसे शरीर की पीड़ा हो तो कम लगे, उसमें अस्थिरता भी का जुड़ाव जुड़ान जो होता है वो भी कम हो जाए। एकत्व का जुड़ान तो होता ही नहीं ज्ञानी को, लेकिन अस्थिरता के कारण से उपयोग जाता है वो भी कम जाए, ऐसा बनता है साधना विशेष होने के कारण से। और वेदन या भोगने से कदापि बाह्य स्थिति उन्मत्त देखने में आए, उन्मत्त मैंने पागलपन जैसे चेष्टा देखने में आए, तीव्र रोग में ऐसा बाह्य परिस्थिति ऐसे दिखने में आए कि जैसे कि पागल तो नहीं हो गए ऐसा लगे। तो भी अंतर परिणाम के अनुपात में कर्म बंध और कर्म का नाश निवृत्ति होती है। जितनी साधना है उसके अनुपात में कर्म का नाश होगा यानी निर्जरा होगी, और जितना भी रागादि भाव है उसके अनुपात में कर्म बंध होगा। जैसे जिस ज्ञानी की जितनी स्थिति है उसके अनुसार, बाह्य स्थिति अनुसार नहीं, अंदर में जो परिणाम में स्थिति है उसी के अनुसार कर्म बंध और कर्म निवृत्ति दोनों बात होगी, क्योंकि साधक को दोनों बात होती ही है, अल्प बंध भी होता है और निर्जरा भी होती है। कितनी होती है कि जितनी साधना होती है उसके अनुपात में होती है, उसके परसेंटेज में होती है, वो बात है। रामचंद्र जी का उदय बहुत चित्र विचित्र हुआ, सीता जी के वियोग में रोए भी और सीता जी को जंगल में भेजी भी, तो वियोग में क्यों रोते थे और लक्ष्मण जी के मृत्यु के बाद 6 महीने तक मुर्दा को खिलाना पिलाना नहलाना, हम उसको स्नान कराएंगे वो कराएंगे वो बुलाएंगे बात करेंगे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे सोएंगे नहीं खाएंगे नहीं, हम भी नहीं खाएंगे, तुम नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, तुम नहीं बोलेगा तो हम सोएंगे नहीं, ये नहीं करेगा वो नहीं करेंगे, पागलपन जैसा उन्मत्त जैसा लगे क्या, कि जैसे रामचंद्र जी पागल हो गए हैं फिर भी वो उसी भव में मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसा कभी दिखने में आता है। उसी वक्त कर्म की निर्जरा भी है और अल्प कर्म का बंध भी है, दोनों बात होती है। जैसी साधना है उसके अनुपात में ये दोनों प्रकार बनता है। और आत्मा जहाँ अत्यंत शुद्ध ऐसा निज पर्याय को सहज स्वभाव को प्राप्त होता है वहाँ तो निर्वाण हो ही जाता है, वहाँ तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो ही जाती है। जितना साधक अवस्था में कमी रहती है उतना बंध होता है, और जितनी साधना होती है उतनी निर्जरा भी होती है, और निर्जरा है वो आंशिक मोक्ष है, वो आंशिक मोक्ष को निर्जरा कहते हैं। संपूर्ण शुद्ध पर्याय उत्पन्न होने से पूर्ण शुद्धता पूर्ण मोक्ष हो जाता है, ये पत्र पूर्ण अवस्था में मिला है। तो ये पैराग्राफ और ऊपर का पैराग्राफ में अनुसंधान क्या है, विषय का अनुसंधान क्या है, कि खुद है जो अपनी बहन के शादी में उपस्थित नहीं हुए, हिंदी भाषा में शरीक नहीं हुए ऐसे बोलते हैं, तो खुद की वितरागता के कारण से नहीं हुए। तो ये वितरागता है, वो अंतरंग परिणाम है, बाह्य परिस्थिति नहीं है, ये यहाँ कहने का आशय है। इसलिए वितरागता क्या चीज है वो दिखाने का वहाँ यहाँ आशय रहा है। बाद में जो 568 पत्र है वो भी सुभाग भाई पर का पत्र है। आत्मस्वरूप का निश्चय होने में अनादि से जीव की भूल हुई है, चली आ रही है, जिससे फिलहाल भी ऐसी भूल हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य लगता नहीं है। क्या कहते हैं, स्वरूप की पहचान उसको निर्णय कहते हैं, निश्चय कहो, निर्णय कहो, पहचान कहो, भाव भाषण कहो, एक ही बात है। कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं, आत्मस्वरूप का जिसमें वर्णन है ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते स्वरूप का निर्णय कर लेते हैं कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है। उसमें अनादि से जीव ने ऐसी भूल की है, यानी कल्पना की है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। बहुत बार ऐसी भूल किया है शास्त्र पढ़ करके भी, तो वर्तमान में भी ऐसी भूल हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। स्वरूप निश्चय पर अपने निर्वाण दर्शन की पगडंडी में पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है, प्रकरण लिखा हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, गहरी बात है। यहाँ तो संक्षेप में उतनी बात है कि जीव ने राग की प्रधानता में विचार करके निर्णय किया है, वो निर्णय गलत है, वो सही पहचान नहीं है, सही निश्चय नहीं है। ऐसा निश्चय आगम के वचन के अनुसार दिखे तो भी उससे ही निश्चय नहीं है, और वहां जीव धोखा खाता है कि जैसा आगम में लिखा है वैसा ही मेरा निश्चय है, तो फिर मेरे निश्चय में गलती कहां है। बौद्धिक स्तर पे देखत रीत से कोई भूल नहीं दिखने में आए, तो भी वो निश्चय में भूल होती है। क्योंकि सही निश्चय अनुभवांश से होता है, वेदन अंश से होता है, केवल विचार और कल्पना से नहीं होता है। इसलिए और वेदन अंश से अनुभवान से निश्चय होता है यह बात उतनी प्रसिद्ध नहीं है, यह बात उतनी प्रसिद्ध नहीं है। बहुभाग लोग धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते ही नहीं है। रूढ़िगत दृष्टि से धर्म को समझा गया है, ये एक बहुत बड़ी आपत्ति है। जैसे भौतिक विज्ञान है, एक बोतल में पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होता है ना पानी, बोतल भी ट्रांसपेरेंट है तो दिखता है। अब वो क्या चीज है? दिखने में तो पानी जैसा है, लेकिन पानी है या व्हाइट पेट्रोल है या एसिड है या कोई अल्कोहल है, हजारों लिक्विड ऐसे होते हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों होते हैं। तो साइंटिफिक परिस्थिति में तो उसका टेस्टिंग किया जाता है, तभी पता चलता है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग के बिना दिखने मात्र से उसका निश्चय नहीं हो पाता कि वही चीज है इसमें। कभी सूंघने में आता है, कभी कोई दूसरे पदार्थ के साथ उसका ड्रॉप लगा करके देखने में आता है, कोई बास से, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। टेस्टिंग के भी बहुत पद्धति हैं। कहने का अभिप्राय वो है कि ये वैज्ञानिक तौर से उसका निश्चय होना जरूरी होता है, और जहाँ तक उसका निश्चय नहीं होता है वहाँ तक उसका प्रयोग कैसे किया जाए, कहाँ उसको इस्तेमाल किया जाए, वो नहीं बन सकता। एसिड हो और पानी जान करके कोई पी लें, मर जाए। इसलिए यहाँ भी प्रैक्टिकल साइड से निश्चय होना चाहिए। एक साइंस है, धर्म है वो विज्ञान है, धर्म है वो कोई रूढ़ी नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, कोई परंपरागत पद्धति नहीं है। तो इसका जो विज्ञान है वो वैज्ञानिक तौर से आत्मा का निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, और ग्रंथ पढ़ करके, किताब पढ़ करके कोई मान ले कि हमको आत्मा ऐसा है, ऐसा ही निश्चय होता है जैसा ग्रंथ में लिखा है, हम सम्मत करते हैं। ग्रंथकार के अभिप्राय से हम इस बात को सम्मत करते हैं। अब ग्रंथ में तो अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, अन्य अनेक संप्रदाय के ग्रंथ हैं, सबकी बात एक सी है ही नहीं। सब आत्मा का स्वरूप अलग अलग कहते हैं। अगर ग्रंथ से ही माना जाए तो हर संप्रदाय के लोग कहेंगे कि हमको आत्मा का निश्चय बराबर है, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हम ऐसा सम्मत करते हैं। और ग्रंथकार अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ लॉजिक भी देते हैं। हर एक संप्रदाय में अपना अपना फिलोसॉफिकल लॉजिक है, न्याय के ग्रंथ बोलते हैं जिसको, होता है। ऐसे आत्मा का निश्चय नहीं होता है, अनुभवान से ही निश्चय होना चाहिए। और वो अनुभव कैसे करना, वो ज्ञानी के बिना इसकी विधि को कोई बता नहीं सकते। प्रत्येक आत्मा को भीतर में ज्ञान वेदन होता है, हमेशा हमेशा चालू होता है, फिर भी मालूम नहीं पड़ता कि जिसके आधार से स्वरूप का निश्चय हो सकता है, वो मालूम ही नहीं पड़ता। वो मालूम पड़े ऐसी योग्यता तक ज्ञानी ले जाए और ज्ञानी उसको कैसे इसके आधार से निश्चय होता है वो कुछ प्रैक्टिकल साइड से बता सकते हैं, तभी इसका प्रैक्टिकल हो पाता है, इसके बिना हो नहीं पाता। ऐसी एक परिस्थिति है, जैसे भौतिक विज्ञान में भी प्रैक्टिकल सिखाने वाले प्रोफेसर होते हैं, खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसी कुछ बात इसमें है। इसलिए ऐसी परिस्थिति के अभाव में कोई निश्चय होता है तो भूल होती है, और अनादि से जीव ने ऐसी भूल की है, वर्तमान में भी ऐसी कोई भूल हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का आत्मज्ञान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार के जितने भी क्लेश के प्रसंग और क्लेश भाव है, और जितने भी प्रकार के दुख है, आकुलता है, उलझन है, आकुलाहट है, सभी प्रकार के जो भी हैं उसके मुक्त होने का एक ही उपाय है, जीव को आत्मज्ञान अगर उत्पन्न हो जाए तो मुक्त हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञान का मूल्य कितना है, इसका मूल्य कोई कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार का दुख और क्लेश को मिटाने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आत्मज्ञान है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व की एक विभूति है, क्या है, वैभव की क्रिया को विभूति कहते हैं। विश्व का एक बहुत बड़ा वैभव है ये, इसलिए आत्मज्ञान संपन्न ज्ञानी को विश्व विभूति बोली जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार में दुख के बहुत से प्रसंग हैं, अनेक प्रकार का दुख और क्लेश को संसारी जीव भोगते रहते हैं, नहीं चाहते हुए भी, लाख नहीं चाहे और लाख क्या करोड़ उपाय करें तो भी दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ता है। यहां तो बोले कि किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश हो ही नहीं सकता, ऐसा आत्मज्ञान है जिसका मूल्य किसी भी प्रकार से किया नहीं जा सकता। ऐसा आत्मज्ञान वर्तमान में हम लोग कर सके, हमको हो सके, इसके अब पूरा पूरा चांस है, पूरा मौका है। अगर हम इसके पीछे लग जाए तो पूरी चाहिए, वो बताइए। ये मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा कारण है, या जगत में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा प्रसंग और उदय है कि हम ऐसे आत्मज्ञान को गौण करके हम उदय को और उदय प्रसंग की मुख्यता कर लें। करें तो क्यों, और हमारी क्यों लगन नहीं हो गए इसके लिए, इसका कोई जवाब शायद नहीं मिलेगा। फिर भी हो सके तो बता दो, इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं, इसके बढ़कर कोई बात है ही नहीं। ये बहुत सिद्धांतिक बात रख दी है। सिद्धांतिक मैंने परम सत्य, हार्ड फैक्ट, उसमें तीन काल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूत भविष्य वर्तमान और लोक के कोई भी कोने में कोई भी प्राणी को अगर आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो सर्व दुख और सर्व क्लेश से मुक्त हो गया, समझो। अब ये प्रश्न होता है, सात सौ उगनी, चार सौ उगनी, संसार में सुख शू है कि जेना प्रति मन में जीव रहनी इच्छा करे, सुख तो है ही नहीं, कल्पित सुख है इसलिए उसका प्रतिबंध होता है, कल्पना का सुख है, वास्तव में तो है ही नहीं। ऐसा जो आत्मज्ञान है वो क्या करने से प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न यहां अपेक्षित है। इसका उत्तर है कि सद्विचार के बिना आत्मज्ञान होता नहीं, सद्विचार मैंने आत्मकल्याण करने का अभिप्राय पूर्वक चलने वाले विचार को सद्विचार कहते हैं। सत का विचार, सत प्राप्ति का विचार, मैंने आत्मकल्याण का अभिप्राय, उसके बिना आत्मज्ञान होता नहीं। एक ही बात, सुविचार कहो या सद्विचार कहो, एक ही बात है। क्या कहा कि जिसको ऐसा आत्मज्ञान चाहिए उसको एक अभिप्राय बना लेना चाहिए कि मुझे आत्मकल्याण करना ही है जैसे कैसे भी, वो अभिप्राय में आना होगा। आत्मकल्याण करना है उसी को ही आत्मज्ञान होगा, क्योंकि आत्मज्ञान वो ही एक आत्मकल्याण का स्टेज है। तो पहले तो आत्मकल्याण का विचार कहो या भावना कहो, एक ही बात है। भावना उत्पन्न भी हुए बिना भावना का फल कहाँ से आएगा? आत्मकल्याण की भावना वाले विचार हुए तभी तो आत्मज्ञान हो सकता है। जिसको ऐसे भाव नहीं है, ऐसे विचार नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, उसको आत्मज्ञान होने का नहीं बनेगा। और सत्संग प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवर्तित नहीं होता, उसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। अब और बात क्या लिखा है कि विचार होना और विचार बल होना, वो दोनों बात अलग अलग होती है। जो सत्संग में आते हैं उनको विचार तो आता है, लेकिन विचार बल माने पुरुषार्थ नहीं चलता है। विचार में ज्ञान होता है, समझ में बात आती है, परंतु वो ज्ञान बल नहीं होता। ज्ञान बल नहीं होता, जिसके पीछे फोर्स नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं चलता। क्या क्या कारण से कि सत्संग के साथ साथ असत्संग और असत्संग रूप प्रसंग में भी जीव रस लेता ले लेता है। यही कारण से सत्संग भी करता है और असत्संग भी करता है, और असत्संग वाले प्रसंग में भी बराबर रस लेता है। तो उसका विचार होने के बावजूद भी विचार बल नहीं चलता। इसलिए संग का ख्याल बहुत करना चाहिए, एवं सत्संग भी करे और असत्संग भी करे। और असत प्रसंग मैंने शादी है, पार्टी है, बहुत लोग इकट्ठे होते, समाज के सगे संबंधी, ये वो, ये सब असत प्रसंग है। पर सत्संग भी है और असत प्रसंग भी है। हो सके तक माँ तक उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी कभी फंस गए तो हमको निरस परिणाम से उस प्रसंग को विसर्जन कर देना चाहिए, निरस परिणाम से। अभिप्राय में तो ये होना चाहिए कि मेरे को वहाँ उपस्थित नहीं है, रहना हुए वही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन क्या करे, बहन की शादी है, भाई की शादी है, वो है, वो जाना ही पड़े। हाँ? ये अभिप्राय से कोई जाता है उसके तो परिणाम बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, और बिगड़ेंगे मतलब उसके परिणाम में नुकसान होगा होगा और होगा ही। अपने अभिप्राय से जाएगा वो तो अपना नुकसान करेगा ही करेगा। जितना ताकत है वहाँ वो हमारे कारण से नहीं बिगड़ते, वो इनके कारण से बिगड़ते हैं। हमको हाथ जोड़ के बता देना चाहिए कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमको हम कोई दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं या जाने के इच्छुक हैं या चल रहे हैं चलने के इच्छुक हैं, तो कृपया हमको चलने दो, जाने दो उस रास्ते पे। हम संसार में तो बहुत घूमे, अभी हमको घूमना नहीं है। लेकिन मेरा फलाना फलाना है इसलिए मुझे तो मेरा तो जाना जरूरी ही है, उसको तो अभी संसार से छूटने का अभिप्राय नहीं हुआ है। नहीं करना चाहिए अपने बाल बच्चे का भी नहीं। बाल बच्चे अपने है ही नहीं, कोई आत्मा के दूसरे आत्मे बाल बच्चा थोड़े होते हैं, हो ही नहीं सकते। सभी आत्मा ही आत्मा है, एक जाति के, एक उम्र के हैं। आप कहेंगे कि इसकी उम्र छोटी है इसलिए बाल बच्चे के, नहीं, अनादि से वो भी वर्तमान तक है, आप भी अनादि से वर्तमान तक है। आप जिसको बाल्यावस्था कहते हैं वो तो शरीर की है, आत्मा की थोड़ी ना है। सभी की आयु एक सी है, संसार में और सिद्धालय में सभी आत्माएं अनादि से हैं और वर्तमान तक हैं। किसकी आयु ज्यादा कम हुई बताइए, कौन छोटे मोटे हैं, है कोई? सवाल ही नहीं पैदा। ये मेरे बाल बच्चे, बहुत खतरनाक गलती है ये, हैं? उसमें तो अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखे। क्या कहा कि यह बात निसंशय है कि जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता है, समझने के बावजूद भी नहीं चलता है, ये मुमुक्षु की खास बात है। इसका कारण असत्संग और असत प्रसंग का जीव का रस है, अभिप्राय समेत इंटरेस्टेड है, उसको विचार तो चलेगा लेकिन विचार बल नहीं चलेगा, वो बात निशंक है। और विचार बल नहीं चलेगा तो विचार बेकार जाएगा। हम कहाँ अपने आप को अलग छांटते हैं कि देखो कुछ लोग को तो आत्मकल्याण का विचार ही नहीं है, हम लोग तो सत्संग में जाते हैं तो इसका विचार तो करते हैं, लेकिन साथ साथ असत्संग में भी जाते हैं और विचार बल चलता नहीं है, तो वो विचार बेकार जाएगा, इसका क्या? ये तो एक विशेष अफसोस की बात है कि हमको पता लगा फिर भी हमने हमारा काम नहीं किया। जिसको इस बात का पता ही नहीं है वो तो बेचारे संसार में संसार की प्रवृत्ति के पीछे दौड़ते ही है, लेकिन जिसको कुछ समझ में बात आई वो भी सफल नहीं हुआ, तो एक विशेष रूप से अफसोस की बात हो जाती है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो जाए इसकी पूरी पूरी दरकार और पूरी पूरी जागृति रखनी चाहिए, ये बात मैंने कहा। आगे का विषय और दूसरा है, यहाँ तक रखें। भक्ति पद है,